आप देखिए कि इसके बाद जो है अब यहाँ पे कत्ले खता की सूरतें और उसका कुफारा बताया जा रहा है। ऐसे नहीं कि किसी को जो है वो यूं ही पकड़कर जो है वो मारा जाएगा, बल्कि क्या है कि यानी बगैर किसी वजह के तो किसी को मारा ही नहीं जा सकता। और अगर जो है कोई कत्ले आमद करता है या कत्ले खता, तो उसका क्या तरीका है? किसी मोमिन की ये शान नहीं कि वो किसी मोमिन को इब्तदान कत्ल करे, लेकिन अगर गलती से ऐसा हो जाए तो ये और बात है। अगर कोई गलती से किसी को जो है वो कत्ल कर देगा तो उसे क्या करना है? वमा काना लिल मोमिनिन अन यक्तुला मोमिनन, और किसी मोमिन का ये काम नहीं है कि किसी दूसरे मोमिन को कत्ल कर दे। अब आप सोचें, इस आयत को जरा पढ़ें और आप देखें कि मुसलमानों के अंदर जो मुसलमानों को मारा जाता है, अखबार को आप उठकर सुबह देखें, खोलें और पढ़ें, आप ये पाकिस्तान और सऊदीया और जो भी इस्लामी ममालिक है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, और आप देखें कि बाप ने बेटे को, भाई ने भाई को, बीवी ने शौहर को, और एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को, एक आपस में कारोबार करने वाला इकट्ठा है उसको, फिर आप डाके, रॉबरी, चोरियां, और किसी ने रिश्ता नहीं दिया, किसी ने जो है वो पानी किसी का ज्यादा ले लिया, गाड़ी आगे बढ़ा ली, फला जगह कोई खड़ा था, आप देखिए कितना ज्यादा कत्ल है ना, कितना कत्ल है। और यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं वमा काना लिल मोमिनिन, और ये है ही नहीं किसी मोमिन के लिए, मोमिन की ये शान ही नहीं है ये यक्तुला मोमिनन के वो किसी मोमिन को, ईमान लाने वाले को कत्ल कर दे। वो जानबूझ के नहीं कत्ल कर सकता, इल्ला खतान, मगर ये के गलती से, भूले से, खता खता यानी गलती से अगर ऐसा हो जाए तो ये दूसरी बात है। ममन कतला मोमिनन खतान, और जो किसी मोमिन को गलती से कत्ल कर दे, तो चूंकि उसने बेशक गलती से किया है लेकिन उसने एक गलत काम किया है, तो इसका जो है उसको अब कफारा जो है वो अदा करना होगा। अब उसका कफारा क्या है? फतहरीरु रकबति मोमिनतिन वदियतुम मुसल्लमतुन इला अहलिही इल्ला अन यसद्दकू। तो फरमाया तो इसका कुफारा ये है कि एक मोमिन को गुलामी से आजाद कराए, फतहरीरु रकबतिन। तो आप देखें तहरीर जो है ये लफ्ज आप पहले ही पढ़ चुकी हैं कि हुर्रियत, आजादी के लिए ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, तो वो क्या करे? फतहरीरु आजाद करे, रकबतिन एक गर्दन को, और जैसे रकबतिन गर्दन को कहते हैं ना, तो क्या करे कि एक गर्दन एक मुसलमान गुलाम या लौंडी को आजाद करना वाजिब है उस पर। रकबतिन गर्दन, जिसमें मर्द भी हो सकता है औरत भी, मुसलमान गुलाम हो या लौंडी, क्योंकि मोमिनतिन की शर्त आई है ना कि वो मुसलमान होना चाहिए। और फिर उसको जो है वो क्या करना है, इसके अलावा और क्या करना है? फिर फरमाया वह दियातुन, और दियत है, दियत का मतलब क्या होता है? वो दाल या इसका रूट है, खून बहा की कीमत जो होती है ना उसको दियत कहते हैं। वह दियत उन दियत है, खून बहा है, मुसल्लमतुन, मुसल्लम जो है जैसे इसके मानी है मुसल्लमतुन के जो है वो अदा कर दिया जाए, जैसे किसी को किसी के सपोर्ट नहीं कर दिया जाता, तो मुसल्लमतुन तो खून बहा अदा किया जाए, इला अहले ही जो मकतूल के घर वाले हैं ना उनको। तो एक मोमिन को गुलामी से आजाद करना है, और नंबर दो मकतूल के वारिसों को खून बहा देना है। अब मकतूल के वारिसों को कितना खून बहा देना है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खून बहा की मिकदार 100 ऊंट या 200 गाय या 2000 बकरियां मुकर्रर की हैं। और अगर कोई शख्स जो है वो 100 ऊंट, 200 बकरियां या 2000 गाय जो है, अगर कोई शख्स जो है 100 ऊंट या 200 गाय या 2000 बकरियां इसकी बजाय पैसे देना चाहता है, तो इन्हीं चीजों की बाजार में कीमत मालूम की जाएगी और फिर उसके मुताबिक जो है वो अदायगी की जाएगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अगर कोई नकद खून बहा अदा करना चाहता था, 800 दिनार या 8000 दिरहम जो थे मुकर्रर थे, जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का जमाना आया तो उन्होंने कहा ऊंटों की कीमत अब चढ़ गई है, लिहाजा अब सोने के सिक्के में 1000 दिनार, उन्होंने 800 दिनार की बजाय 1000 दिनार कर दिए। और चांदी के सिक्के में 12,000 उन्होंने कर दिया, कहा कि इतना जो है वो अदा किया जाएगा। और ये अदायगी किसकी है, ये कत्ले खता की है, यहाँ पे कत्ले अम्द की नहीं बताई जा रही। इल्ला यसद्दकू, इल्ला मगर ये कि वो माफ कर दें, वो सदका ही कर दें। कौन माफ कर दें, कि वो जो मकतूल के वारिस है ना, जो घर वाले हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं हमने कुछ भी नहीं लेना, हमारी जान तो चली गई, वो तो मर गया, अब हम किसी से कुछ लेना नहीं चाहते, हमने माफ कर दिया, कि वो खून बहाई माफ कर दें। फाइन काना मिन कौमे अदुविल्लकुम, बस अगर वो किसी ऐसी कौम से था जो तुम्हारी दुश्मन है, जिससे तुम्हारी दुश्मनी हो, तो अगर वो किसी ऐसी कौम से था, फिर क्या है, वह हुआ मोमिन, और हो वो मोमिन, कि अगर वो मुसलमान मकतूल हुआ, कत्ल मुसलमान है, लेकिन उसका ताल्लुक जो है वो क्या है, कि वो ऐसी कौम के दरमियान में रहता है जो दुश्मन है, जो तुम्हारे दुश्मन है, तो अब उनका कफारा क्या है, इसका कफारा क्या है, फतहरीरु रकबति मोमिनतिन, तो इसका कफारा एक मोमिन गुलाम आजाद करना है। अब यहाँ पे भी एक गर्दन आजाद करना है, ईमान लाने वाली, मुसलमान मर्द भी हो सकता है जो कि गुलाम है, या फिर लौंडी, उसको आजाद जो है वो किया जा सकता है। अब यहाँ पे जो है इसकी ये शक्ल बता दी गई, क्योंकि ये जो मुसलमान है, ये काफिरों के दरमियान जो है वो रहता है ना, तो अब जो है बस इसका कुफारा एक गुलाम आजाद करना है। वह इनकान अमिन कौमी बैनकुम, और अगर जो है, अगर वो है किसी ऐसी कौम के साथ, कौमी बैनकुम जो तुम्हारे दरमियान है, तो एक ऐसी कौम के साथ वो रहता है कि बैनकुम व बैनहुम मिसाकुन, के उस कौम में और तुम्हारे दरमियान जो है एक मायदा हो चुका है, फदियतुम मुसल्लमतुन इला अहलिही, तो इसके वारसों को खून बहा दिया जाएगा, वतहरीरु रकबति मोमिनतिन, और एक मोमिन गुलाम को आजाद करना होगा, फमल्लम यजिद फसियामु शहरैन मुततबिअइन, और अगर कोई गुलाम ना पाए तो वो मसलसल पे दर पे 2 महीने के रोजे रखे, तौबतम मिन अल्लाह, ये जो है वो, ये जो इसने गुनाह किया था, इस पर अल्लाह से तौबा करने का तरीका है, वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और अल्लाह अलीम और दाना है। अब आप देखिए कि यहां पर जो है, ये जो आयत का हिस्सा है, कि अगर वो मकतूल किसी ऐसी कौम से था, जो मुसलमान मकतूल था, लेकिन ऐसी कौम से था जिससे तुम्हारी दुश्मनी हो, तो इसका कफारा एक मोमिन गुलाम आजाद करना है, और अगर वो किसी ऐसी गैर मुस्लिम कौम का फर्द था जिससे तुम्हारा मुआहदा, मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम कौम का फर्द, तो इसके वारसों को खून बहा दिया जाएगा, और एक मोमिन गुलाम को आजाद करना होगा, फिर जो गुलाम ना पाए तो पै दर पै 2 महीने के रोजे रखे। इस पूरी बात का खुलासा क्या है, इसका खुलासा ये है कि जो शख्स मर गया है, अगर तो वो दारुसलाम का बाशिंदा है, तो इसके कातिल को खून बहा देना होगा, और अल्लाह से अपने कसूर की माफी मांगने के लिए एक गुलाम भी आजाद करना होगा। अगर वो जो है वो काफिरों के दरमियान रहता है, यानी दारुल हरब का बाशिंदा है, तो कातिल को सिर्फ गुलाम आजाद करना है, इसका खून बहा कुछ नहीं है। आपने पढ़ा ना यहाँ पे अभी, कि अगर वो है तो मुसलमान, लेकिन वो क्या करता है, वो काफिरों के दरमियान रहता है, तो बस उसको एक, फिर कातिल को सिर्फ गुलाम आजाद करना होगा, खून बहा कुछ नहीं देना। मुफस्सरीन कहते हैं इसकी वजह यह है कि पैसे जब अगर काफिरों के पास जाएंगे तो उल्टा वो मुसलमानों पर ही लगाएंगे ना, तो इसलिए जो है अब उसका खून बहा नहीं है, बस सिर्फ गुलाम को आजाद करना है। और तीसरी शक्ल क्या है, कि अगर वो किसी दारुल कुफर का बाशिंदा है, जिससे इस्लामी हुकूमत का मुआहदा है, तो कातिल को एक गुलाम भी आजाद करना होगा, और इसके अलावा खून बहा भी देना होगा, नंबर 2, और खून बहा की मिकदार वही होगी जितनी उस जिस कौम से मुआहदा हुआ है ना, तो उसके किसी गैर मुस्लिम फर्द को कत्ल कर देने की सूरत में जो मुआहदा है उसके मुताबिक जो है वो दी जानी चाहिए। तो इस तरह जो है यहाँ पे जो कत्ले खता है इसकी हमें तीन शक्लें जो है वो हमारे सामने आती हैं। और इसमें ये वाली बात कि मोमिन गुलाम आजाद करना, अगर गुलाम किसी को नहीं मिल रहा तो पै दर पै 2 महीने के रोजे रखे, तो इसमें ये बात याद रखें कि जो रोजे रखने हैं मुसलसल रखने हैं, उसमें नागा नहीं करना बीच में। अगर कोई शख्स जो है बगैर किसी उजरे शरई के एक रोजा भी छोड़ देता है तो भी उसको फिर दोबारा रोजे जो है वो रखना शुरू करने होंगे, फिर उसको दोबारा रोजे जो है वो रखने पड़ेंगे अगर एक रोजा भी वो छोड़ देते हैं। और आप सोचें कि रमजान के महीने में जब सब रोजे रख रहे होते हैं तो रोजा रखना आसान होता है, लेकिन अब इसको सजा, क्योंकि इसने एक गलती की है और इससे जो है वो गलती हुई है, तो कफारे के लिए इसको जो है वो रोजा जो है वो रखने हैं और मुसलसल 2 माह। अच्छा, यहाँ पे ये बात याद रखें कि ये एक होता है किसी पे कोई जुर्माना फाइन किया जाता है, एक होता है कफारा। यहाँ पे ना अल्लाह ताला कह रहे हैं तौबा मिनल्लाह, तो ये अल्लाह की तरफ से तौबा का तरीका है। और तौबा में क्या होता है, नदामत होती है, शर्मिंदगी होती है। जुर्माने में क्या होता है, नागवारी, मजबूरी, बेजारी और तलखी। तो अब यहाँ पे कफारा का ये मतलब है जैसे छुपाने वाली, तो जो उसकी गलती हुई है तो ये जो ये कफारा अदा करेगा, ये तौबा करेगा, तो फिर इसका गुनाह जो है वो मिट जाएगा, छुप जाएगा, नेकी उस गुनाह पर छा जाएगी, उसे ढांप लेगी। जैसे आप देखें दीवार पर धब्बे लग जाते हैं और आप क्या करती हैं, व्हाइट वॉश करके उन धब्बों को दूर कर देती हैं, इसी तरह ये बहुत बड़ी उसे गलती हुई है कि उसने जो है वो किसी को कत्ल कर दिया है, मोमिन को कत्ल कर दिया है, या उसने जो है किया तो मोमिन को है, वो काफिर कौम के दरमियान रहता है, या फिर ये कि वो है तो मोमिन लेकिन वो किसी गैर मुस्लिम कौम के दरमियान में रहता है जिनसे मुसलमानों का मुआहदा भी था। तो यहाँ पर जो है ये उसका जो है वो बताया जा रहा है तरीका कि फिर उसको कफारा अदा करना है। और असल रूह क्या है कि नदामत, शर्मिंदगी, अफसोस कि मैंने क्यों ऐसा किया, और अगर वो इस सोच के साथ जो है वो कफारा अदा करेगा तो फिर जो है वो अल्लाह इसकी जो गुनाह है उसको माफ कर देगा। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और अल्लाह को खूब पता है, वो जानता भी है और वो दाना भी है, हिकमत वाला भी है कि ये किस सोच के साथ जो है वो कर रहा है। मैं यक्तुल मोमिनन, अब कोई शख्स जो है किसी मोमिन को कत्ल करता है मुतअम्मिदन जानबूझकर, पहले जो है वो तीन शक्लें आपने पढ़ी कत्ले खता की और है वो मुसलमान के बारे में ही, लेकिन ये कि भूले से हुआ है तो उसकी शक्ल थी, अब ये कि जानबूझकर कत्ल किया है मुतअम्मिदन, आइन मीम दाल अम जो होता है इसके माने कहते हैं जानबूझकर करना, तो जानबूझकर अगर करता है इरादा करके और दानिस्ता, फजजा उहू जहन्नम खालिदन फीहा, तो इसकी जजा जहन्नुम है जिसमें वो हमेशा रहेगा। वगदिब अल्लाहु अलैहि, और उस पर अल्लाह का गजब है, अल्लाह की नाराजगी है, वलानहु और उसकी लानत है, वअद्द लहू अजाबन अजीमा, और अल्लाह ने इसके लिए सख्त अजाब जो है वो मुहैया कर रखा है। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो है वो जानबूझकर जो है वो कत्ले अम जो है इसकी कितनी सख्त सजा बताई गई। नंबर एक कि वो जहन्नुम में जाएगा, उसमें हमेशा रहेगा। नंबर दो उस पर अल्लाह का गुस्सा। नंबर तीन अल्लाह की लानत। और नंबर चार वअद्दा लहू अजाबन अजीमा, कि अल्लाह ने उसके लिए जो है वो सख्त अजाब जो है वो तैयार कर रखा है, बड़ा अजाब जो है वो इसके लिए तैयार कर रखा है। इससे क्या बात पता चलती है कि इस्लाम और इस्लामी सोसाइटी जो है वो जान माल का तहफ्फुज़ देती है। इस्लाम ये पसंद नहीं करता कि कोई जो है वो किसी को जो है वो कत्ल कर दे, इल्ला ये कि किसी से कत्ल खता हो जाए, जैसे कोई किसी की गाड़ी के नीचे आ जाए या किसी को इरादा नहीं था मारने का, लेकिन ये कि गलती से जो है वो गोली चल गई और वो जो है वो मर गया। तो इस सूरत में भी आप देखेंगे कितने यहाँ पे अहकाम बताए गए हैं। आप देख लीजिए गजवाए उहद में जब मुसलमानों को थोड़ी सी शिकस्त हुई, मुसलमान बदहवास हुए, तो हजरत हुजैफा बिन यमान रजी अल्लाह के वालिद थे हजरत यमान, मुसलमान थे, और मुसलमानों ने उनको काफिर समझकर मार डाला। हजरत हुजैफा रजी अल्लाह पुकारते रहे कि ए लोगो ये मेरे वालिद हैं, ये मेरे वालिद हैं, मगर अफरा तफरी के हाल में किसी ने हजरत हुजैफा रजी अल्लाह न की आवाज को सुना ही नहीं, और गलती से जो है ना इनके वालिद को मुसलमानों ने ही जो है वो मार डाला। तो ये कत्ले खता है। या फिर जैसे मैंने कहा एक्सीडेंट हो जाए, किसी की गाड़ी के नीचे कोई आ जाए, या किसी ने ऐसे किसी को हल्की सी थप्पड़ मारा या हल्की सी चोट लगाई, इरादा मारने का नहीं था, अब दूसरा शख्स मर गया, तो ये भी कत्ले खता जो है इसमें आएगा। या तीर या पत्थर या गोली तो शिकार को मारी थी, जैसे बाज़ुकात बाज़ लोग जो है मुख्तलिफ जानवरों का परिंदों का शिकार करते हैं, लेकिन वो किसी मुसलमान को लग गया और वो मर गया। तो ये सारी शक्लें जो है वो क्या है, ये कत्ले खता की शक्लें हैं, और इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो कफारा बताया है, और जो जानबूझ कर करेगा अब उसके लिए आप देखें कि बड़ी ही सख्त सजा जो है वो सुनाई जा रही है। और इसके लिए जो है फिर क्या बात पता चलती है कि जो है वो अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह की नाफरमानी से बचना चाहिए, और इस छोटी सी जो दुनिया की जिंदगी है जिसमें हम सब रह रहे हैं, तो एक दूसरे की इज्जत एहतराम करना, और इस बात की जरूरत है कि लोगों को बताया जाए कि दूसरे की जान जो है वो क्या है, कि जान और माल की हिफाजत करना जो है वो इस्लाम का तकाजा है। और अस्सलाम वालेकुम जब कोई किसी को कहता है तो इसका मतलब ही है कि उससे जो है वो दूसरे की जान और माल जो है उसको तहफ्फुज है, वो उसको कोई नुकसान जो है वो नहीं पहुंचाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा दरबतुम फी सबीलिल्लाही फतबय्यनू वला तक़ूलू लिमन अल्क़ा इलैकुम अस्सलाम लस्त मुमिना। अब यहाँ पे जो है मुसलमानों को जो है एक और अहम बात जो है वो बताई जा रही है, और क्योंकि इस्लाम की इब्तदा में अस्सलामु अलैकुम अगर कोई कहता था तो ये एक सिंबल था, ये एक स्लोगन था, ये एक लोगो था, ये एक जैसे पासवर्ड नहीं होता, ये एक पासवर्ड था, ये एक शियार था कि जो भी अस्सलाम वालेकुम कहेगा, सलाम कहेगा, तो पहचान था कि ये मुस्लिम है। अस्सलाम वालेकुम या फिर ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इस तरह मुसलमानों को पता चल जाता था कि ये दूसरा जो है वो मुस्लिम है। और हुआ ये कि मुसलमान जो अरब में इकट्ठे रहते थे ना, मुसलमान भी और काफिर भी, लिबास जबान सब चीजें आपस में काफिरों और मुसलमानों की मिलती जुलती थी। अगर फर्क था तो किसका, कि अस्सलाम वालेकुम को कहता या ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता तो पता चल जाता कि ये मुस्लिम है। और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह कहते हैं कि एक शख्स थोड़ी सी बकरियां लिए हुए मुसलमानों को मिला और अस्सलाम वालेकुम कहा, मुसलमानों ने समझा कि ये बहाना कर रहा है, उसे मार डाला, उसकी बकरियां ले ली। हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह ने उसे कत्ल कर दिया। उस वक्त अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की, से बुखारी ने रवायत किया है, ये आयत नंबर 93। हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह ने कहते हैं, ये एक और बुखारी की रवायत है, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कबीला जुहैना की तरफ भेजा, हमने अल सुबह इन पर हमला किया और इन्हें शिकस्त दी, और मैं एक अंसारी इनके एक आदमी से मिले, मैं और एक अंसारी कबीला जुहैना के एक आदमी से मिले, और जब हमने उस पर काबू पा लिया तो इसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। अब अंसारी तो इसे रुक गया, लेकिन हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह ने कहते हैं मैंने नेजा चला दिया हत्ता कि वो मर गया। जब हम वापस आए तो ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा उसामा क्या तूने ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद उसे कत्ल कर दिया। मैंने कहा या रसूलुल्लाह इसने पनाह लेने के लिए ये कहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया ऐ उसामा क्या तूने उसे ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद कत्ल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्फाज कई बार दोहराते रहे हत्ता कि मैंने ख्वाहिश की कि मैं आज से पहले इस्लाम ही ना लाया होता, जिसे बुखारी ने रवायत किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि जब उसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया था तो हजरत उसामा बिन जैद ने उसको क्यों कत्ल कर दिया, बार बार अब अपना जुमला दोहरा रहे थे। और फिर हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह का ये कहना कि मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि काश के मैं आज से पहले मुस्लिम ही ना हुआ होता, इसका क्या मतलब है। उन्हें यह एहसास हुआ कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी है, इतनी बड़ी गलती कर दी है, और अगर मैं आज मुसलमान होता, क्योंकि इस्लाम कबूल करने से पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, तो सोचने लगे काश कि मैं अब मुसलमान होता तो मेरा ये गुनाह जो है वो माफ हो जाता। इसी तरह हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ने जो है वो बनी हदबा की जंग में काफरों को मारना शुरू किया, हालांकि वो कहते जाते थे हमने दीन बदला हमने दीन बदला। इसका क्या मतलब था? वो ये कहते थे कि हमने दीन तब्दील कर लिया, यानी हम मुसलमान हो गए, लेकिन वो मुसलमान का लफ्ज बोलने की बजाय कह रहे थे हमने दीन बदला हमने दीन बदला। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये हाल सुना तो फरमाया, या अल्लाह मैं खालिद के काम से बेजार हूँ। और बाद रवायात में आता है कि आपने बाद में मकतूलों की दियत भी बैतुल माल से अदा कर दी थी। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पसंद नहीं थी, तो जब वो कह रहे थे कि दीन बदला तो फिर हजरत खालिद ने उनको क्यों मारा। इसी तरह जो हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह ने उसको जो है वो ला इला इल्ला कहने के बाद भी मार दिया, क्योंकि वो ये समझ रहे थे हजरत उसामा बिन जैद कि इसने जान बचाने के लिए कलमा पढ़ लिया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और रवायत से पता चलता है कि फरमाया, ए उसामा, क्या तूने इसका दिल चीर कर देख लिया था कि वो अपनी जान बचाने की खातिर ऐसा कर रहा है। तो इससे क्या बात पता चलती है? इससे ये बात पता चलती है कि पहली बात तो ये कि मुसलमान जो है अगर जंग करते हैं किसी को मारते हैं तो मकसद ऐसे ही जंग करना मारना या सामान लूटना ये नहीं है, अल्लाह के दीन को फैलाना है। और इसीलिए मुसलमानों का ये शियार रहा कि जहां कहीं गए तो उन्होंने पहले इस्लाम की दावत दी। और अगर कोई इस्लाम कबूल कर ले या वो कलमा पढ़ ले या वो अस्सलामु अलैकुम ही कह दे तो इसका ये मतलब है कि वो अपने आप को मुसलमान जाहिर कर रहा है। अब उसका और अल्लाह का मामला है, बाकी लोगों को ये फतवा देने की और ये बात कहने की जरूरत नहीं है कि ये हकीकी मानों में मुसलमान है या नहीं। अब आप देख लीजिए कि तहकीक के बगैर छोड़ देना, ये हो सकता है कि काफिर झूठ बोलकर अपनी जान बचा ले, लेकिन अगर मुसलमान कत्ल कर देंगे तो एक बेगुनाह मोमिन को अगर मार दिया जाए तो तुम्हारे हाथ से एक काफिर को छोड़ देने में गलती करना इससे बेहतर है कि तुम एक मोमिन को कत्ल करने में गलती करो। तो यहाँ पे इसी चीज की तरफ जो है वो इशारा किया जा रहा है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैह।